पतित पावनी परम पुनीता जय माँ सीता जय माँ सीता।
पतित पावनी परम पुनीता जय माँ सीता जय माँ सीता।
पतित पावनी परम पुनीता जय माँ सीता जय माँ सीता।
पतित पावनी
पतित पावनी परम पुनीता जय माँ सीता जय माँ सीता।
पतित पावनी परम पुनीता
जय माँ सीता जय माँ सीता
जय माँ सीता जय माँ सीता
जय माँ सीता जय माँ सीता
जय माँ सीता जय माँ
जय माँ सीता जय माँ सीता
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 जय माँ सीता करो पुनीता
जय माँ सीता
जय माँ सीता करो पुनीता
जय माँ सीता
जय माँ सीता जय माँ सीता
जय माँ सीता जय माँ
जय माँ सीता जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता जय माँ सीता सीता। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी। आज के प्रसंग में साक्षी हनुमान जी महाराज नेक विघ्न बाधाओं को लांघते हुए मातेश्वरी के चरण शरण में पहुंच गए हैं, अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं, शांति प्राप्त कर ली है, भक्ति प्राप्त कर ली है, जीवन को सफल बना लिया है, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। एक साधक साधना के लिए निकला था, आज उनकी साधना सफल हो गई है। शांति की खोज के लिए निकला था, माँ सीता को अध्यात्म शांति कहता है, भक्ति कहता है, जो भी कहिएगा, साधक इन दोनों की खोज के लिए ही साधना करता है, शांति की प्राप्ति के लिए या भक्ति की प्राप्ति के लिए एक ही बात है, बिन भक्ति शांति नहीं मिलती, भक्ति से ही शांति मिलेगी। भोगों में शांति नहीं है, विश्व में शांति नहीं है, संसार में शांति नहीं है, शांति केवल भक्ति में ही है। उसी खोज में हनुमान जी महाराज निकले हैं और उन्होंने आज शांति को प्राप्त कर लिया है। आज भक्ति की खोज समाप्त होती है, भक्ति को प्राप्त कर लिया है उन्होंने। सुंदरकांड साधक जी में बड़ा विचित्र कांड है, इसमें हनुमान जी महाराज कभी बहुत विराट बन जाते हैं, कभी बहुत छोटे बन जाते हैं, कभी मोटे बन जाते हैं, कभी पतले बन जाते हैं, कभी बड़े कभी छोटे, सब कुछ आप जानते हो। ध्यान दीजिएगा, प्रदर्शनों का आशय नहीं है, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, औरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, ये तो हम करते हैं। हनुमान जी महाराज के अंदर ये सब चीजें नहीं है। हनुमान जी महाराज को कर्मयोग के, भक्ति योग के, ज्ञान योग के आचार्य माना जाता है, इसलिए हर साधक के आदर्श हैं हनुमान जी महाराज। इनमें से कोई चीज भी सीखनी हो तो हनुमान जी महाराज के पास जाइएगा, वे आपको सिखाएंगे, सुंदर और सही ढंग से सिखाएंगे। इन तीनों का समन्वय भी यदि आप सीखना चाहो कर्म योग का, भक्ति योग का एवं ज्ञान योग का, तीन ही तो मार्ग है ना प्रभु प्राप्ति के। इन तीनों का समन्वय भी यदि आप सीखना चाहो तो हनुमान जी महाराज आपको सिखाने को तैयार है। इस कांड में हनुमान जी प्रभु यही हम सबको सिखाते हैं, इन तीनों का समन्वय। कहीं भक्ति मार्ग को अपनाते हैं जहां बहुत छोटे हो जाते हैं ये भक्ति का मार्ग है, कहां बहुत बड़े हो जाते हैं ये ज्ञान का मार्ग है। मानो जिस मार्ग पर चलने की उन्हें आवश्यकता महसूस होती है ये मार्ग यहां उपयोगी होगा, उसी मार्ग पर वो चल पड़ते हैं। मत सोचिएगा उनकी यात्रा निर्विघ्न थी, नहीं, कभी किसी साधक की यात्रा निर्विघ्न नहीं हो सकती। हां, स्थान स्थान पर निर्भर करेगा। जिस स्थान पर शांति की खोज के लिए हनुमान जी महाराज निकले हैं वहां साधना निर्विघ्न नहीं हो सकती, विघ्नों से भरी पड़ी होगी। हनुमान जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? प्रवृत्ति नगरी में। दो शब्द अध्यात्म प्रयोग करता है, लंका नगरी अर्थात प्रवृत्ति की नगरी है ये, यहाँ लूट खसूट की नगरी है ये, और पाने की नगरी है ये, एक्सपेंशन की नगरी है ये। रावण का एक से अनेक से पेट भरता ही नहीं है, वह और चाहता है और चाहता है और चाहता है और चाहता है, इसी को प्रवृत्ति नगरी कहा जाता है। सोने की लंका है, कोई छोटी मोटी संपत्ति का मालिक नहीं है रावण, इसके बावजूद भी उसकी तृप्ति हुई हो, उसे संतोष मिला हो, ये देखने में नहीं आता। अन्यथा इतनी सारी महिलाएं उसके पास होती हुई भी उसे सीता की चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मानो उनसे उसका पेट नहीं भरा। ये तो एक बात है, अनेक सारे पक्ष हैं रावण के जीवन में, वह कभी अपने आप को संतुष्ट, उसका लूट खसूट का उसका मार्ग है, प्रेम का मार्ग नहीं है उसका। प्रेम में तो देना ही देना होता है, इसने देना सीखा ही नहीं है। इसका मार्ग लेने लेने का है, लूटने का है, खसूटने का मार्ग है, त्याग का मार्ग नहीं है। त्याग का मार्ग तो प्रेम का मार्ग हुआ करता है, यहां त्याग ही त्याग व्यक्ति करता है। इस नगरी में शांति की खोज के लिए आसान है। दो स्थानों पर मां शांति मां सीता के दर्शन होते हैं, एक चित्रकूट जहां अयोध्यावासी भरतजी महाराज के साथ पधारते हैं, प्रेम नगरी है। चित्रकूट क्या स्थान है? निवृत्ति का स्थान है। ये प्रवृत्ति का स्थान है, वह निवृत्ति का स्थान है। हाँ, निवृत्ति के स्थान में आपको शांति प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति में कोई विघ्न बाधाएं नहीं है, बहुत आसानी से ये सब कुछ आपको मिल जाता है। त्याग का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है। उधर राम सब कुछ त्याग के इस चित्रकूट में आए हुए हैं, इधर भरत सब कुछ त्याग के चित्रकूट में गया हुआ है, यही निवृत्ति मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, कुछ न चाहने का मार्ग है, मानो कामना शून्यता का मार्ग है। तो फिर क्या कठिनाई हो सकती है? छुटपुट कठिनाइयां हुई, वह झट से भरत जी महाराज अयोध्या वासियों के साथ पार करके तो उन्होंने शांति के दर्शन कर लिए हैं, युगल सरकार के दर्शन कर लिए हैं। वहां पर प्रीति मार्ग में ऐसा नहीं है, प्रीति मार्ग में ऐसा हो नहीं सकता। तनिक सोचो, कितने महीनों से वहां पर शांति विराजमान है, प्रीति नगरी में, लंका नगरी में, जहां शांति साक्षात विराजमान है, जहां मां भक्ति साक्षात विराजमान है, क्या वहां के रहने वालों को शांति की प्राप्ति हुई? जितनी अशांति मां सीता के होती थी इतनी अशांति लंका नगरी में पहले नहीं थी। प्रवृत्ति नगरी में शांति नहीं, लंका नगरी में शांति नहीं हो सकती। अतएव शांति के होते हुए भी, साक्षात वहां शांति के विराजमान होते हुए भी, सब अशांत ही अशांत आपको दिखाई देते हैं, ये लंका नगरी है। ऐसी नगरी में हनुमान जी महाराज शांति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति के लिए चल पड़े। एक साधक साधना के लिए निकलता है तो सबसे पहली बाधा आती है उसके अपने स्वजन संबंधी परिवार। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या यहां साधना नहीं हो सकती, क्या यहां सेवा नहीं हो सकती, हम बाधा नहीं बनेंगे इत्यादि इत्यादि। सबसे पहली बाधा, मैं नाग पर्वत हनुमान जी महाराज के चाचा हैं, ये अपने सगे संबंधी बाधा प्रस्तुत करते हैं, पत्नी बाधा प्रस्तुत करती है, परिवार बाधा प्रस्तुत करते हैं, सबके सब बाधा प्रस्तुत करने वाले, अनेक प्रलोभन भी होते हैं, ये सब बाधा प्रस्तुत करते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मार्ग है, यदि ऐसा ही मार्ग अपनाना था तो पारिवारिक जीवन, तो गृहस्थ जीवन क्यों अपनाया, इत्यादि इत्यादि ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पक्के हैं, अतएव इनकी बात नहीं सुनी। मैं नाग पर्वत सोने का पर्वत है कहते हैं, मानो अपनों द्वारा दिया हुआ प्रलोभन कितना स्ट्रांग प्रलोभन है, जो इसको पार नहीं कर पाता वह कभी साधना में सफल नहीं हो सकेगा। ये हमारी सबकी समस्या है। जो बाधा विघ्न घर वाले प्रस्तुत करते हैं, सबसे पहली बाधा है, जो इसको पार नहीं कर पाता वह आगे एक पग भी नहीं बढ़ पाएगा, साधना में नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, कुछ और थोड़ा बहुत होता रहेगा लेकिन साधना में बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। हनुमान जी महाराज ने इनका स्पर्श करके इनका आदर किया है और कहा, मुझे राम काज पूरा किए बिना विश्राम कहा, मैं विश्राम नहीं दूंगा। अतएव परिवार का तिरस्कार नहीं किया है, परिवार को समझाने की जरूरत, तिरस्कार करने की जरूरत नहीं। तिरस्कार करोगे तो भी साधना सफल नहीं होगी। ये परिवार कुटुंब साधक चुनो, ये संसार का ये भाग बहुत कठिन भाग है, बहुत ही कठिन भाग है। माता पिता की तरफ से कोई प्रलोभन नहीं तो बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, औरों की तरफ से, ये छूटते ही नहीं है। सोचते तो हैं हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं लेकिन इसके पीछे तनिक सोच के देखिएगा तो आपको गहराई से यही मिलेगा, मेरा मुख मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, अन्यथा ये सब कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं, ये पीछा नहीं छोड़ता। बड़ी बारीकी से ये पकड़ के रखता है साधक को, एक पग कहीं आगे नहीं बढ़ने देता, ना ही इसका तिरस्कार करके साधना में सफलता मिलती है और ना ही इनके जाल में फंस के साधना में सफलता मिलती है। कितना भयानक रूप है इस परिवार का, इस परिवारिक मोह का। हनुमान जी महाराज हाथ से स्पर्श करते हैं, मैं आपका सादर पूर्ण आदर करता हूं, आपकी भावना बड़ी सुंदर है, मैं विश्राम करूं। मानो परमेश्वर एवं देवी देवता जो साधक के हर वक्त सहाय है, हर जगह सहाय है, क्या देखना चाहते हैं। एक साधक साधना की सफलता के लिए निकला है, इसके अंदर शारीरिक बल, इसके अंदर बौद्धिक बल है कि नहीं, ये राम काज करके सफल होके वहां से लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अतएव बुद्धि बल का परिचय देते हुए हनुमान जी महाराज ने कहा, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है, मान मेरे अंदर पर्याप्त बल है, मेरे अंदर पर्याप्त शारीरिक बल है। लोगों के लिए 5 मिनट बैठना बहुत कठिन है, मैं 5-10 घंटे भी बैठ लूं तो मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक साधक को कौन सा बल चाहिए इस वक्त साधना के लिए, यही चाहता है ना कि वह बैठ के आसानी से विश्राम पूर्वक साधना कर सके। यदि साधन काल में भी आपके लिए बैठना मुश्किल है, आपके लिए ये करना मुश्किल है, वो करना मुश्किल है, तो साधना तो फिर कुछ ना हो। पांच मिनट में ही पांच बार हिलना पड़ता है, ऐसा साधक क्या साधना करेगा? नहीं, उसके लिए शारीरिक बल चाहिए, वह सफल हो गए। देवता भेजते हैं सुरसा को, जा देख इसमें बौद्धिक बल भी है कि नहीं, चेक हिज विजडम। देवताओं ने सुरसा को भेजा है, सर्पों की मां है, इसे भेजा है जा जाके देख उसके अंदर इंटेलेक्ट कैसी है, प्रज्ञावान है कि नहीं। मात्र शारीरिक बल से काम नहीं चलेगा, साधना सफल नहीं होगी, इसके लिए बौद्धिक बल भी अनिवार्य है, शायद शारीरिक बल से कहीं ज्यादा। अतएव सुरसा आती है। सुरसा क्या है? सुरसा मजे लेने वाली, सुरसा मजे लेने वाली। अध्यात्म सुरसा को कीर्ति की कामना कहता है। जहां देवी त्याग करोगे, जहां कुछ अपने आप को औरों से अलग बनाओगे, वहीं पर आपको प्रशंसा सुनने को मिलेगी, आपको खाने को आएगी, अपना मुंह खोलती जाएगी और आप उसमें फंसते जाओगे। इतना मुंह खोलती है प्रशंसा, इतना मुंह खोलती है ये ख्याति, आदमी उससे निस्तार नहीं पा सकता, फंस के रहेगा। ये चाहन, ये चाह, ये कामना ख्याति की, प्रशंसा की, यशमान की कभी खत्म ही नहीं होने वाली, अमिट है, यूं कहिएगा अमिट है। तीनों ऐशनाओं में से ये ऐशना लोकेशना प्रबलतम है। अतएव उन्होंने पुत्रेशना नहीं भेजी, उन्होंने वित्तेशना नहीं भेजी, उन्होंने लोकेशना भेजी है।